हे वीर शिरोमणि अर्जुन, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जितनी भी बातें मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, वही अब मैं फिर से बतलाता हूँ। जब मनुष्य प्रत्येक वर्ष खेती करता रहता है और प्रत्येक वर्ष उसे अच्छी फसल भी प्राप्त होती रहती है, तब खेती के लिए मेहनत करने में उसका जी नहीं उबता। बार बार अग्नि में तपाने पर और उसे साफ करने पर स्वर्ण की कांति और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए है पांडुपुत्र, लोग यह समझने लगते हैं कि स्वर्ण को अच्छी तरह तपाकर शुद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार है अर्जुन, मैं तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि स्वयं अपनी लालसा और अनुराग से अपने ही संतोष के लिए ये बातें तुमसे बार बार कहता हूँ। लोग नन्हे नन्हे बच्चों को आभूषण पहना देते हैं, गहने, भला उन बच्चों को उन आभूषणों का क्या ज्ञान होता है? पर उन आभूषणों का सुख का उपभोग माता की आंखें ही करती है। इसी प्रकार जो जो तुम्हें आत्मकल्याण का लाभ होता है, जो जो मेरा सुख भी निरंतर द्विगुणित हो जाता है। पर हे अर्जुन, अभी न अलंकार आदि बातों को जाने दो। अब तो मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें तुम्हारे स्नेह में भूल गया हूँ, इसलिए अब प्रेम से परिपूर्ण मेरा मन तुमसे वही बातें बार बार कहता हुआ भी नहीं अघाता। पर अब ये बातें बहुत हो चुकी, अब तुम अपने चित्त को एकाग्र करके मेरी बातों को सुनो। हे अर्जुन, मेरा परम श्रेष्ठ वचन सुनो। इन वचनों में स्वयं परब्रह्म अक्षरों का रूप धारण करके तुम्हारा प्रगाढ़ आलिंगन करने के लिए आ रहा है। पर फिर भी है अर्जुन, मेरा वास्तविक और निश्चित ज्ञान अभी तक तुम्हें नहीं हुआ है। जो मैं यहाँ तुमको दृष्टिगत हो रहा हूँ या दिख रहा हूँ, वही मैं समस्त विश्व भी हूँ, ये सारा संसार भी मैं ही हूँ। अब दूसरे श्लोक की व्याख्या ज्ञानेश्वर महाराज कर रहे हैं कि मेरे स्वरूप का प्रतिपादन करने में वेदों ने चुप्पी साध रखी है, मन और प्राण भी पंगु हो गए, चंद्र सूर्य बिना रात के अस्त हो गए, सूर्य और चंद्र बिना रात के ही अस्त हो गए, अर्थात ये सब मेरा वर्णन करने में असमर्थ है। जैसे माता के उदर में स्थित गर्भ माता का वय नहीं देख सकता, वय मतलब आयु नहीं देखता, वैसे ही किसी देवताओं को कभी मेरा ज्ञान नहीं हो सकता। ये देवता लोग भी मुझे तत्व से नहीं जानते। जैसे कोई जलचर अगाध समुद्र को माप नहीं सकता, जैसे मच्छर जैसे लांग कर आकाशमंडल का विस्तार पार नहीं कर सकता, वैसे ही इन महर्षियों का ज्ञान भी मुझे नहीं जान सकता। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, किससे उत्पन्न हुआ हूँ, इत्यादि प्रश्नों को निर्णय करते करते लोगों के अनेक कल्प बीत गए। इसका प्रमुख कारण यही है कि ये जितने देवता महर्षि और अन्य सारे जीव हैं, उनका आदि कारण मैं ही हूँ। इसलिए हे पांडुपुत्र, मेरे विषय में जानना अत्यंत कठिन है। यदि नीचे की ओर प्रवाहमान जल फिर उलटकर पर्वत पर चढ़ सकता हो, अथवा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वृक्ष यदि फिर अपनी जड़ की ओर लौट सकता हो, तो फिर मुझसे उत्पन्न होने वाला यह जगत भी मुझे जान सकता है। यदि वट वृक्ष के सूक्ष्म अंकुर में संपूर्ण वट वृक्ष आवृत किया जा सकता हो, अथवा जल की तरंगों में सारा समुद्र भरा जा सकता हो, अथवा मिट्टी के परम्पर में, तभी ये जीव मात्र महर्षि और देवता इत्यादि जो मुझसे उत्पन्न हुए हैं वो मुझे जान सकते हैं। किंतु इतना होने पर भी जो कोई लौकिक प्रवृत्ति की आगे बढ़ाने वाली चाल का परित्याग कर इंद्रियों की ओर अपनी पीठ कर लेता है, अथवा जिसकी प्रवृत्ति कि वह आगे वाली चाल जारी रहती है, वह भी यदि पीछे की ओर पलटकर और अपना ध्येय भाव भूलकर पंचभूतों के शिखर पर चढ़ जाता है और वहाँ स्थिर रहकर निर्मल आत्म प्रकाश में अपने नेत्रों से मेरा अजत्व स्वरूप देखता है, और जो इस प्रकार मेरा वो विशुद्ध अविनाशी स्वरूप जानता है, जो मूल कारण से परे का और सब लोगों का महेश्वर है, उसके संबंध में तुम्हें यह अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि वह जीव रूपी पत्थरों में पारस की तरह है। मतलब ऐसा कोई बिरला ही पुरुष है जो मुझे तत्व से जानता है, क्योंकि उसको मन अंतर्मुख करना पड़ता है। अभी तो मन बहिर्मुख संसार की तरफ होता है, इंद्रियां बाहर सुखों को देखती है, और जब अंतर्मुख हो जाती है और संसार से उलट करके अंतर्मुख हो जाता है तो वही जीव श्रेष्ठ कोई बिरला ही होता है, वो जिसे अपन बोलते हैं ज्ञानी। जैसे समस्त रसों में अमृत रस श्रेष्ठ है, वैसे ही उसके संबंध में तुम्हें यह भली बातें जान लेना चाहिए कि यह मनुष्यों में साक्षात मेरा ही अंश है। ऐसे व्यक्ति को चलता हुआ ज्ञान रूपी सूर्य का मंडल ही जानना चाहिए, उसके अवयव मानो मतलब उसके अंग सुख रूपी वृक्ष के कोमल अंकुर ही होते हैं। उसमें जो मनुष्य भाव दृष्टिगोचर होता है वो वास्तव में भ्रम है, और केवल लौकिक दृष्टि के कारण दृष्टिगोचर होता है। जैसे जो जीवन मुक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको तुम अपने इस मानुषी नेत्र से, चमड़े के नेत्र से नहीं देख सकते। उनमें तो आप ये कल्पना परिकल्पना करते हो, जैसे हम खाते हैं ऐसे ये खाते हैं, जैसे हमारे फोड़ाफुंसी होते हैं इनके भी फोड़ाफुंसी होते हैं, इनमें हमें क्या फर्क है। तो जिस प्रकार अज्ञानी ज्ञानी के निश्चय को नहीं जानता, पर ज्ञानी ज्ञानी के निश्चय को जानता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार जीवन मुक्त ज्ञानी होते हैं वो करोड़ों बिरलों में एक ही होते हैं, पर लोग सब उसको अपने सदृशी सुखी दुखी जन्मने वाला मरने वाला क्योंकि वो तो जन्मने मरने से परे हो चुका, दिखने मात्र का शरीर है। जैसे दिखने मात्र का जला हुआ वस्त्र दिखने मात्र ही होता है, उसको हाथ लगाओगे तो बिखर जाता है, ऐसे ज्ञानी का शरीर भी प्रारब्ध विवेक से चेष्टा होती है, आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, मान अपमान, वो कभी गुस्सा करता भी दृष्टि आता है तो वो कल्याण के लिए शिष्यों के लिए, कभी किसी पे क्रोध भी करता आता है तो उनके कल्याण के लिए, है ना। इसलिए वो सब लोग सोचते हैं कि लो इनको तो गुस्सा आ गया, अरे ये तो रोते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को डांटते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सब लीला होती है, पर उनको वही जान सकता है जो उनके जैसा हो। उनमें जो मनुष्य भाव दृष्टिगोचर होता है वो वास्तव में भ्रम है, और केवल लौकिक दृष्टि के कारण ही दृष्टिगोचर होता है। उसके उस मनुष्य भाव में सत्यांश नहीं। यदि कपूर में किसी प्रकार हीरा भी मिला मिल जाए और दोनों के ऊपर कहीं से जल आ पड़े तो कपूर तो गल जाएगा, पर उसके साथ वह हीरा नहीं गलेगा। इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति मनुष्य लोक में निवास करने के कारण भले ही ऊपर देखने पर प्रकृत मनुष्यों की तरह दृष्टिगोचर होता है, जैसे ज्ञानी पुरुष होता है, जीवन मुक्त होता है, सद्गुरु होते हैं, आप उनको भी कभी कभी भ्रमित देखते हो, कभी गुस्सा करते देखते हो, कभी रोग से देखते हो कि कैंसर हो गया इनको हो गया, तो वो सोचते हैं जैसे अपने को दुख हो रहा वैसे हो रहा, उनको नहीं होता, वो सोचते हैं कि मेरे को नहीं है, इस शरीर को है, ये चक्कर है, और इसका प्रारब्ध ये भुगत रहा है, उसको दृष्टा मात्र देखते हैं। तो पर वो दूसरे सोचते थे बापड़ो दुख पा रही हो ऐसे। तो इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति मनुष्य लोक में निवास करने के कारण भले से ऊपर से देखने पर प्रकृत मनुष्यों की तरह दृष्टिगोचर होते हैं, पर फिर भी उनमें प्रकृति माया के दोष की गंध नहीं होती, दिखते हैं मगर वो होते नहीं। पाप स्वतः उनका परित्याग करके भाग जाते हैं, और जैसे जलते हुए चंदन वृक्ष का त्याग कर सर्प दूर चला जाता है, वैसे समस्त संकल्प, संकल्प मतलब मन, ये संकल्प ऐसा करूं ऐसा ना करूं, ये कौन करता है? मन करता है। तो ज्ञानी पुरुष क्या होता है? निर्विषय मन हो जाता है। निर्विषय मन शिव संकल्पमस्तु, वो शिव स्वरूप हो जाता है।